नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे और प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है जिसका शीर्षक है विवेक की साधना और सिद्धि।
हाँ, ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और 4 जून 1969 को गायत्री तपोभूमि मथुरा में दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण उद्बोधन है ये।
बिल्कुल, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ये जो सात्विक जीवन है, हमारे कर्म है और विवेक मतलब सही गलत की समझ,
हाँ,
ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे ये हमें असल में सिद्धि यानी एक तरह से सफलता की तरफ ले जा सकते हैं।
सही बात है,
तो शुरू करते हैं इस विचार यात्रा को।
तो गुरुदेव ने शुरू में ही महात्मा आनंद स्वामी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे अनीति से मतलब बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जो है वो बुद्धि खराब कर देता है।
ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने अन्न शब्द को सिर्फ खाने तक ही नहीं रखा बल्कि हमारी आजीविका मतलब हम कमाते कैसे हैं उस तक ले गए। कहा कि आजीविका शुद्ध होगी तो मन भी ठीक रहेगा।
बिल्कुल, और यहीं से सात्विकता की जो बात है वो साधना की नींव बन जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सात्विकता से ही सिद्धियां अपने आप आती हैं।
वो कोई मतलब बाहर से नहीं टपकती।
अच्छा,
हाँ, जैसे पिपलाद ऋषि थे, उनके जीवन में जो चमत्कार हुए वो उनके सात्विक आहार का ही तो नतीजा थे। सात्विक आहार मतलब मन पवित्र रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है। अगर मन में ही क्या कहते हैं कूड़ा कचरा भरा हो तो फिर साधना उपासना का जो असली मतलब है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये बात तो है, और इसी से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी सुनाया गुरुदेव ने।
हाँ, वो तपस्वी महात्मा वाला।
हाँ,
वही एक तपस्वी थे जिन्हें अपनी सिद्धियों पर थोड़ा शायद घमंड हो गया था।
हो जाता है कभी कभी।
तो वो एक गांव में भिक्षा लेने गए। वहां एक घर की स्त्री ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा क्योंकि वो अपने पति की सेवा, बच्चों की देखभाल इन कामों में लगी थी।
और उसने उसे अपना योगाभ्यास बताया।
हाँ, यही तो कमाल की बात है। और महात्मा से ये भी कहा, हम कोई चिड़िया थोड़ी हैं जो आप हमें जला देंगे। मतलब कितनी निर्भीकता और समझ।
सही कहा।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस स्त्री ने महात्मा को गाइड किया, पहले एक बनिया के पास भेजा, फिर एक सफाई कर्मी के पास।
हाँ, और वो दोनों क्या कर रहे थे?
अपना अपना काम, बनिया अपना व्यापार, सफाई कर्मी अपनी सफाई, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। और उन्होंने अपने काम को क्या कहा? ईमानदारी का योगाभ्यास, परिश्रम का योगाभ्यास।
अद्भुत, ये है कर्मयोग का सार। मतलब पूज्य गुरुदेव यही तो समझा रहे हैं कि असली योग सिर्फ आसन लगाना या गुफा में बैठना नहीं है।
हाँ,
अपना जो भी कर्तव्य है, जो भी काम है, उसे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करना, वो भी उतना ही बड़ा योग है, शायद उससे भी बड़ा।
सही बात। वो स्त्री, वो बनिया, वो सफाई कर्मी सब शुद्ध मन से अपना कर्म कर रहे थे। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं।
बिल्कुल, यही है सहज कर्म योग।
फिर गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया चंद्रभान जी का। ये दिखाता है कि व्यवहार में सात्विकता और मेहनत कैसे सिद्धि दिलाती है।
हाँ, वो जो पाकिस्तान से आए थे विभाजन के बाद।
हाँ जी, टेलीफोन ऑपरेटर की छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत, अपने अच्छे व्यवहार और सात्विक जीवन के दम पर सोचिए उसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बन गए।
कमाल है।
गुरुदेव ने इसे व्यवहार की सिद्धि कहा, मतलब उनका व्यवहार ही उनकी सफलता का कारण बना। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो अपने अफसर का काम भी मदद के तौर पर करते थे, धीरे धीरे उन पर एक तरह की निर्भरता बना ली।
ये दिखाता है कि परिश्रम, सादगी, अच्छा व्यवहार, इनमें कितनी ताकत है। और गुरुदेव ने अपना खुद का अनुभव भी बताया ना।
हाँ, 24 साल तक सात्विक अन्न और जीभ को साधने का अनुभव, और सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी उन्होंने कर्मठ रहने की प्रेरणा दी। गांधी जी, नेहरू जी का उदाहरण दिया।
हाँ, कि बुढ़ापे में भी सक्रिय रहना जरूरी है, कर्म ही जीवन है।
फिर गुरुदेव ने मन को साधने और जीवन में कुछ भी पाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें बताई,
विवेक और साहस।
हाँ, विवेक मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, वो गहरी समझ जो हमें सही काम करने की हिम्मत दे, और साहस यानी उस समझ पर टिके रहने की हिम्मत।
और जब ये दोनों जाग जाते हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है।
जैसे हीरालाल शास्त्री जी का उदाहरण, पत्नी की मृत्यु हुई, दुख तो हुआ होगा पर उसमें डूबे नहीं, संकल्प लिया कि गांव की लड़कियों को पढ़ाएंगे, और कहां तक पहुंचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।
प्रेरणादायक है वाकई।
एक और कहानी स्वामी श्रद्धानंद जी की है जो पहले मुंशी राम थे।
हाँ, उनकी पत्नी की कर्तव्य परायणता।
बिल्कुल, उनकी पत्नी के सेवा भाव ने उनके अंदर ऐसा विवेक जगाया कि उन्होंने शराब पीना छोड़ा, पूरी जिंदगी बदल दी और एक महान समाज सुधारक बने।
ये है विवेक की शक्ति, आत्मचिंतन का परिणाम।
हाँ, और भी उदाहरण है, महर्षि कर्वे जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जीवन लगा दिया, सातविलेकर जी जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद वेदों का भाष्य किया, राजा महेंद्र प्रताप
जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके प्रेम महाविद्यालय खोला।
हाँ, ये सब विवेक की सिद्धि के ही तो उदाहरण है।
सही बात, और इसी के साथ गुरुदेव ने वो चेतावनी भी दी थी कि अनीति से कमाया धन बच्चों को बनाता नहीं बिगाड़ता है। कहा था ये धन ही बेटे को खाएगा, बहुत गहरी बात है।
सच में। तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन, विवेक की साधना और सिद्धि का सार क्या निकलता है?
यही कि असली सफलता, असली सिद्धि
वो किसी बाहरी चीज या चमत्कार से नहीं आती। हाँ, बल्कि वो हमारे अंदर ही है। विवेक जगाने से, सात्विक जीवन जीने से, ईमानदारी से अपना काम करने से और जो सही है उसके लिए साहस दिखाने से मिलती है।
बिल्कुल सही कहा, सिद्धियां, क्षमताएं सब अंदर हैं, बस विवेक की चाबी सुने खोलना है।
तो सोचने वाली बात यह है ना कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने विवेक से, मतलब अपनी सही समझ से, ऐसा कौन सा एक छोटा सा पर सचेत कदम उठा सकते हैं जो हमारी अंदर की शक्तियों को जगाने की शुरुआत करे।
और ये जो कर्मयोग वाली बात है कि अपने काम को ही पूजा समझो, ये आज के जमाने में कितनी जरूरी और प्रासंगिक हो सकती है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।